ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पर्चे भरे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण और केटीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली के कई क्षेत्रों में कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी और खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से जारी। भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला रात 8:15 पेरू से। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक कुल 306 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन आज कई चर्चित चेहरों ने पर्चा दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंचकर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि दिल्ली वालों ने इस बार फिर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाने का मन बना लिया है।
मैं अब उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के लोग हमें विश्वास के साथ वोट देंगे, क्योंकि 10 साल में हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, इलाज फ्री किया, अस्पताल ठीक किए, सड़कें ठीक की, बिजली फ्री कर दी, बसों का किराया मुफ्त किया महिलाओं के लिए, बुजुर्गों का इलाज फ्री कराएंगे। हमारे पास एक विजन है दिल्ली के लिए।
इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के प्रवेश वर्मा से है। श्री वर्मा ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस ने इस सीट पर संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। वहीं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रमेश भिदुड़ी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी पर इस क्षेत्र के लिए काम न करने का आरोप लगाया।
सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है, जाकर देखिए, लोगों को चीना दूभर हो गया 3.5-4 साल से। अब 3 महीने से सड़कें बननी शुरू हुई हैं, अब तक क्या कर रही हैं आतिशी जी आप, क्योंकि कोरोना में 3 साल तक लगातार इलाके में आई नहीं।
इस सीट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आतिशी और कांग्रेस से अलका लंबा चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज बादली विधानसभा सीट से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल किया। उनके सामने आम आदमी पार्टी के अजेश यादव हैं, जिन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया। भाजपा ने इस सीट पर दीपक चौधरी को टिकट दिया है। वहीं आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने के बाद अपना पर्चा भरा। मालवे नगर से भाजपा के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय और आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए कैलाश गहलोत ने आज बिजवासन विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। शकुर बस्ती से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, विश्वासनगर से भाजपा के ओम प्रकाश, मेहरौली सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार पुष्पा सिंह सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किए। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी की है। पार्टी ने नरेला और हरिनगर सीट से उम्मीदवारों में बदलाव किया है। इस सूची में नरेला से शरद चौहान और हरिनगर से सुरिंदर सेतिया को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित 40 प्रमुख नेताओं के नाम इस सूची में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी उन सभी ताकतों को बढ़ावा देती आई है जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। श्री नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भाजपा, आरएसएस और सरकार से लड़ रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता की लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के विश्वास को धोखा देना है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर उन पर हमला बोला। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना है।
ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और ये कहना गलत नहीं होगा ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है गैर जिम्मेदाराना है।
श्री गांधी ने नई दिल्ली में पार्टी के नए मुख्यालय भवन के उद्घाटन के दौरान ये कथित टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में कानून अपना काम करेगा। गृह मंत्रालय द्वारा कथित रूप से आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले को एक बड़ा मामला बताया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर खास रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है सीलमपुर विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता अमन यादव की एक रिपोर्ट।
सीलमपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक अहम सीट है। आम आदमी पार्टी से वर्तमान विधायक अब्दुल रहमान इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। नतीजा, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामकर यहां से फिर से अपनी चुनावी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने श्री रहमान के पक्ष में चुनावी प्रचार किया था। वहीं आपने यहां से जुबैर अहमद को खड़ा किया है जो सीलमपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के बेटे हैं। भाजपा ने दोनों उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए अनिल गौड़ को टिकट दिया है जो सीलमपुर के अंतर्गत आने वाले मौजपुर वार्ड से निगम पार्षद हैं। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,92,000 से अधिक मतदाता हैं, इसमें करीब 1,00,000 पुरुष और लगभग 91,000 महिला मतदाता हैं। इसकी स्थापना आपातकाल के दौरान उत्तर और मध्य दिल्ली में अपने घरों को खोने के बाद विस्थापित हुई आबादी को स्थानांतरित करने के लिए की गई थी। गंदगी, सड़कों पर जाम की समस्या, अतिक्रमण, जलापूर्ति, जल भराव, कानून व्यवस्था और रोजगार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस अपना गढ़ वापस जीत लेगी या भाजपा अपनी पहली जीत के साथ इतिहास रचेगी।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 180 मामले दर्ज किए हैं। लगभग 123 गैर लाइसेंसी हथियार और 92 कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस दौरान 12 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 59 किलोग्राम से अधिक के मादक पदार्थ और 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि जब्त की गई है। वहीं दिल्ली नगर निगम ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 8,000 से अधिक होर्डिंग्स और 44,000 से ज्यादा पोस्टर हटाए हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आर एलिस वाज ने मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आज एक पहल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत श्रीमती वाज ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए 3,000 से अधिक ऑटो रिक्शा के बेड़े को हरी झंडी दिखाई। श्रीमती वाज ने बताया कि जीवंत पोस्टर और नारों से सजे ये ऑटो रिक्शा मोबाइल जागरूकता इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में तीसरे काशी तमिल संगमम और केटीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष काशी तमिल संगमम अगले महीने की 15 से 24 तारीख तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन के इस कार्यक्रम में 1,200 प्रतिनिधि, कारीगर और नव प्रवर्तक शामिल होंगे। श्री प्रधान ने बताया कि ये पहली बार होगा जब काशी तमिल संगमम के प्रतिभागी महाकुंभ का आनंद लेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे।
इसकी मुख्य कार्यक्रम स्थल काशी के नमो घाट अयोध्या पिछले वर्षों की भांति भी प्रतिनिधि जाएंगे और प्रयागराज भी जाएंगे। लेकिन इस बार की विशेषता ये होने वाला है, इस बार काशी तमिल संगमम कुंभ की बैकग्राउंड पे होगा, कुंभ की अंदर होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज नई दिल्ली में पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी मुख्यालय महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य पार्टी नेताओं के आदर्शों को दर्शाता है।
So for Congress people, it's important to understand who we are, what is our tradition, what is our history, who, where we come from. Look in the building. You will see Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru. And it doesn't stop there. Workers, chief ministers, governors, defense ministers, foreign ministers, all of them who served the constitution of our country. All of them who saluted the tricolor.
Delhi Jal Board ne bataya ki bhoomigat jalashay aur booster pumping station ki varshik flushing ke karan कल आजादपुर मंडी, सादिक नगर और आसपास के क्षेत्रों में, बुराड़ी के कुछ हिस्सों में, मुकुंदपुर, झरौदा कला और डीडीए फ्लैट्स कल्याण विहार में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से जारी है। इसके बाद भारतीय पुरुष टीम का सामना पेरू से होगा। ये मैच रात 8:15 से खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक कपिल के पास, जो इस समय नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उपस्थित हैं।
जी मनोज।
हाँ अभिषेक, ये खो खो विश्व कप पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है, तो जनता के बीच किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है?
मनोज जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो खो खो विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है उसके लिए दर्शक बेहद उत्सुक हैं और बड़ी संख्या में स्टेडियम में लाइव मैच देखने के लिए मौजूद भी है। हर ड्रीम रन, हर पॉइंट पे जोरदार तालियां बज रही हैं और जोश शोर के साथ दर्शक अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा अभिषेक, इस समय भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से जारी है या पूरा हो चुका है? इस समय मुकाबले की क्या स्थिति है और क्या ताजा अपडेट है?
इस वक्त भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से जारी है और इस वक्त भारत बहुत बड़े अंतर के साथ आगे है। इंडिया का स्कोर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया इस वक्त डिफेंड कर रहा है और जिनका स्कोर है 95 और ईरान जबकि महज सिर्फ 12 अंक अब तक हासिल कर पाया है और मैच अपने अंतिम क्षणों में है, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान अब इस लीड का अंतर को पाट पाएगा और भारत शायद ये मैच जीत रही है।
ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में एनसीसी कैडेटों के निस्वार्थ सेवा भाव और राष्ट्रीय तथा सामाजिक प्रगति में बहुमूल्य योगदान देने की उनकी भूमिका को सराहा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बांसेरा बैम्बू पार्क में चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए आयोजित पतंग उत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने दिल्ली वासियों से विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पर्चे भरे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण और केटीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली के कई क्षेत्रों में कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी और खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से जारी। भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला रात 8:15 पेरू से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।